देखते हैं इंशा अल्लाह ताला तफसीर आज की।
وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً اور جب عورتوں سے تم نکاح کرو تو وہ چیز جو ہمارے ہاں سب سے پیچھے رکھی جاتی ہے اس کے بارے میں کہا گیا صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ان کے جو مہر ہیں ان کو نحلہ نحلہ بڑا اگر کوئی بچی کا نام بھی ہو تو بڑا اچھا ہے اسی طرح اس آیت میں حنیہ یہ بھی بچیوں کے نام بہت اچھا ہے کہ خوش دلی سے دو خوش دلی کے ساتھ ان کے مہر دو یعنی پھر جو مہر ہے یہ عورت کا حق ہے اور اس کے اندر بھی ڈنڈی نہ مارو اس کے اندر بھی مہر کو ادا کرتے ہوئے بخل نہ کرو یعنی آج جو مہر جیسے رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تو شرعی مہر ہے مطلب شرعی مہر کون سا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے کہاں سے نکالا اس کا شرعی مہر کا یہ لفظ اور کیسے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیویوں کا مہر بالکل بھی 32 روپے اور 4 آنے یہ نہیں رکھا تھا 32 روپے فقیر بھی نہیں لیتا آج تو وہ اتنے مہر رکھ کے اور کتنی بری یہ بات ہے جتنا بھی مہر رکھیں کم سے کم رکھیں یا جتنا بھی زیادہ رکھیں وہ کسی کی مرضی اس کی حیثیت اتنی ہو سکتی ہے لیکن اس کو کہنا یہ شرعی مہر ہے یعنی دین کا مذاق اڑانا ہے دین کا مذاق اڑانا ہے جبکہ ایک عورت کی جوتی جو اس نے پیر میں پہنی ہوتی ہے اور سسرال والے لے کر آتے ہیں وہ بھی 1000 روپے کی ہوتی ہے اور مہر کے وقت جس کو اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ اس کو کہا صدقات اور صدقات سے مراد ایک جگہ تفسیر میں آیا فریضہ یہ فریضہ ہے اب فریضے کو کیا کرنا جس کو کہا گیا اس کو خوش دلی سے دو اس کو کس طرح سے اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے آج یہ آپ سب جانتے ہیں اور یہ مہر عورت کا حق ہے یہ اس کا حق ہے اس کا ولی اس کا مہر نہیں رکھ سکتا مثلا بعض ہمارے معاشروں میں اس طرح کے بھی رواج ہیں کہ باپ جو ہے وہ مہر مقرر کر کے اور اس کے بعد وہ اس مہر کو رکھتا ہے لڑکی کو تو نہیں دیا جاتا یعنی سمجھنے ایک طرح سے اپنی بیٹی بیچ دی کہ وہ رکھ دی اب باپ نے اپنی ملکیت میں لے لیا یہ تو عورت کا حق تھا اور پھر اس کو جیسے مرضی باپ نے ہی استعمال کیا اس مہر کو مہر کی رقم کو اور وہ اس لیے بڑے بڑے مہر لگانا چاہتا ہے کیونکہ کل کو یہ مہر تو اس نے ہی استعمال کرنی ہے نا تو یہ بھی ایک بری بات ہے کیونکہ یہ کہا گیا یہ عورت کا حق ہے صدقات سچائی سے صدق سے ہے نا صدق سے کیا اس کا تعلق ہے یعنی آدمی جو ہے اپنا صدق اس سے شو کرتا ہے کہ میں سنسیئر ہوں اس کے ساتھ اور میں اس کی ساری ذمہ داریاں اٹھاؤں گا اور یہ سمجھ لیں ایک ویڈنگ گفٹ ہے ایک ویڈنگ گفٹ ہے یہ وہ عورت سے کبھی واپس نہیں لے سکتا ایسے کہ اس کو زبردستی کرے اب میں نے تمہیں مہر دے دیا اب یہ واپس کرو مجھے نہیں ہاں فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اسی چیز میں سے دینا چاہیں جتنا مہر ان کو دیا ہوا ہے ان میں سے کچھ دینا چاہیں مثلا اس کو زیور کہہ دیا تھا یہی اس کا مہر ہے اب وہ اس میں سے ایک سیٹ آدمیوں کہتے ٹھیک ہے آپ اس کو بیچ کے نا اپنے بزنس میں لگا لیں وہ اپنی خوشی سے دے رہی ہے خود سے نفسن خود سے فکولو ہنیا مریا تو پھر آپ اس کو کھا سکتے پھر آدمی کو کھا گیا پھر کوئی مسئلہ نہیں پھر تم خوش مزہ ہو کے خوشگوار یعنی ہنیا جو ہے وہ یعنی خوش ذائقہ مزیدار اس طرح کا خوشگوار اس کے لیے آتا ہے اور مریا یعنی جب کھانا کھا کے اس کے بعد بھی کوئی تکلیف نہ ہو کلو سے ہے نا اس کا مطلب لٹرلی کھانا نہیں ہے مطلب مال کھانا بھی تو کرتا ہے نا اصل میں انسان اپنا زیادہ مال کھانے پینے پہ خرچ کرتا ہے اس لیے اس کو کلو کہہ دیا گیا پر نہ مال ویسے بھی ہم کہتے ہیں اس نے اس کا مال کھا لیا تو وہ کھا ایسے نہیں منہ میں ڈال لیا مطلب یہ کہ یعنی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اور اس کے بعد بھی مریا یعنی اس کے بعد بھی غیر مضر زود ہضم جس کو کہیں گے وہ جو کھانا ہے وہ بعد میں بھی تکلیف نہ دے کہ بعد میں بھی کوئی تانے یا کوئی باتیں نہ سنائی جائیں پھر تم کھا سکتے ہو اب کیا مطلب اس کا ہوا کہ ایک تو ہمیں یہاں پہ مہر کی اہمیت پتہ چلی ہے اور یہ پتہ چلا ہے کہ مہر ادا کرنا خوش دلی سے ہوتا ہے ہمارے یہاں کیا رکھا جاتا ہے ہم جہالت میں ابھی بھی رہ رہے ہیں نا جہالت والے بھی اس معاملے میں تو اچھے تھے وہ مہر پھر بھی دیتے تھے عورتیں اپنے مہر رکھواتی تھیں جس جیسا کسی کی حیثیت ہوتی تھی اس کے مطابق ہمارے یہاں بس وہ لکھا جاتا ہے اور ساتھ بھی بڑے دھڑلے سے बगैर किसी शर्म के कहते हैं, इतना लिख दें जी देना किसने है, सुना है आपने ये कभी, लिख दो इतना देना किसने है बाद में, कुछ नहीं दिया जाता। और अगर कभी औरत मांग ले तो कहते तुम इतनी लालची हो, शर्म नहीं आती तुम्हें मांगते में। आदमी कहता है लो आज तक जो तुम्हारे पर खर्चा किया है वो क्या था, अब तुम मेहर मांग रही हो, आज तुम्हें इतना आज सैरें कराई, फलां लेके जगह लेके गए, ये इतने मैंने तुम्हें गिफ्ट्स दिए, वो गिफ्ट अपनी जगह है, जो अल्लाह ने मेहर का कहा वो देना जरूरी है, जो खिलाया पिलाया सैरें कराई वो अपनी जगह है। और यहां से पता चलता है कोई भी गिफ्ट आप वापिस नहीं ले सकते। आपको पता है हदीस में आता है आदमी ने कितना मर्जी दिया होगा औरत को, हदीस में आता है कि कोई तोहफा देकर भी वापिस लेना इसकी मिसाल इतनी गंदी है ना कि आपको सुन के भी कराहत आएगी, जैसे कुत्ता अपनी वॉमिट को चाट ले ऐसे है, कुत्ता अपनी वॉमिट को चाट ले इस तरह है तोहफा दे के वापस लेना। हमारे तो मंगनियां टूट जाए वापस दो जो हमने आपको दिया था, शादी खत्म हो जाए वापस लो इससे सारा जो इसको हमने डाला था, जो तोहफे दिए थे वो भी वापस करो हमें, नहीं। हाँ एक चीज है कि मेहर अगर कोई औरत अपनी मर्जी से कहे कि मैं ठीक है जी ये इतना आप रख ले, उसको दे दिया वह कह रही है कि चलो मैं अपने हस्बैंड को इतना माफ कर देती, चलो ये अपने इस वक्त इसको जरूरत है ये अपने कारोबार में लगा ले, चलो इसको मैं खुशी से अपनी खुशी से मैं देती हूँ चलो कोई नहीं, तो वो अलग बात है, वो फिर वो वापस ले सकता, वो इसमें नहीं आएगा। फिर वो ये नहीं कहे कि हाय नहीं ये तो मैंने हदीस सुनी है तो इसलिए नहीं, नहीं। हाँ वैसे बाकी तोहफे वापिस लेना वो इस तरह उनकी मिसाल है एक, हाँ मेहर एग्जम्प्टेड है इससे इतना इतनी बात में कि वो खुशी से दे रही है, कोई उसको जबर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। जैसे अगर कोई आदमी मेहर अदा किए बगैर मर जाता है तो वो मेहर उसके ऊपर कर्ज है, वो मकरूज मरा है, उस वक्त खड़े कर देते हैं औरत को तुम माफ कर दो अपने हस्बैंड को, वो बेचारी अब क्या करे उस वक्त, वो कहती है हाँ मैंने माफ ही कर दी, अब जो कोई चीज मिलनी नहीं तो माफ ही करना है, तो वो भी कह देती है मैंने माफ कर दी, अब उसको प्रेशराइज इतना कर रहे हैं तो क्या करेगी। तो यहां से पता चला कि मेहर इज इम्पोर्टेंट, और मेहर देना खुश दिली से होना चाहिए, एहसान जता के नहीं, ये लो पकड़ो तुमने मांगा था, ये तो गिफ्ट है। और ये गिफ्ट ऐसा है ना कि खुदा ना खास्ता आदमी फौत हो जाता है या उसने तलाक दे दी, तो कम से कम इस औरत के पास इतना होना चाहिए कि ये अपनी कुछ दिन तो गुजार सके, अपना कुछ गुजारा तो कर सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना मेहर रखा अपनी बीवियों का, आप हैरान होंगे नबी अलैहिस्सलाम, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रिच नहीं थे, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत रेल पेल थी पैसों की, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के मेहर के बारे में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मुस्लिम में रिवायत है किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना मेहर मुकर करते थे, तो फरमाती हैं आपकी अजवाज का मेहर 12 ओकिया और निश होता था। फरमाया तुम जानते हो निश क्या है, उसने कहा कि मुझे नहीं पता, फरमाया निस्फ ओकिया, तो ये 500 दिरम बनते हैं चांदी के, यानी कॉइन्स होते थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का मेहर था। और आज के उसमें कैलकुलेट किया गया है तो 131.5 तोला बनता है ये चांदी, तब आप खुद सोच लें चांदी आज कितने तोले की है और 131 तोले कितने बनेंगे। तो कोई देखना भी चाहिए, हजरत उम्मे हबीबा जो थी इनका मेहर नजाशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेके और 4,000 दिरम रखा था, 4,000 1,052 तोला बनता है ये, इतना बड़ा मेहर था इनका। हाँ किसी आदमी की नहीं है हैसियत तो वो उसके मुताबिक कर ले, लेकिन आज क्या मुझे किसी का पता चला ने कहा बहुत जी उसकी शोहरत हो रही है, उस औरत ने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई फरहान सूरत याद कर लो यही मेरा मेहर है, क्यों क्यों। अब उसमें कहते हैं नहीं वो सहाबी भी तो थे ना, देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास कुछ नहीं था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें फरहान फरहान सूरत याद है, उन्होंने कहा हाँ, तो आपने फरमाया अच्छा तुम वो कुरान तुम्हें इतना याद है ना बस, तुम ये औरत तुम इस मेहर पे ही तुम्हारे साथ निकाह करता हूँ इसका, तो वो इसलिए कि उन सहाबी वो ऐसे थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा घर से जाके लोहे की एक अंगूठी ले आओ, उन्होंने कहा वो भी नहीं है मेरे पास, बस मेरे पास ये चादर है तो जो मैंने अपने ऊपर तहबंद है जो मेरा, तो आपने फरमाया इसका वो क्या करेगी, तुम इसको पहनोगे तो उसके पास कुछ नहीं होगा, अगर वो पहनेगी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा,
तो क्या इसका फायदा, यानी उसकी तो मिल्कियत ना हुआ ना, ये मेहर तो इसको देना है। तो जब कुछ भी नहीं मिला तो तब ये फरमाया। अब आप एक्स्ट्रावेगेंट शादियां कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, 300 लोगों का आपने खाना खिलाया है, आप पता नहीं क्या क्या खुराफात पे भी स्पेंड कर रहे हैं, और मेहर आपने क्या रखा हुआ, बस एक सूरत याद कर ली है। नहीं, मेहर एक गिफ्ट है, एक माली उसकी कोई वो होनी चाहिए, जो अगर वो आदमी मालदार है तो उसके मुताबिक उसको दे, हाँ सूरतें भी याद करा ले, कोई मसला नहीं। लेकिन ये ना करें कि अच्छा इसकी जान छुड़ाने के लिए वो आदमी भी कहे मेरी भी जान छूटे, चलो सूरत ही याद करके इसको सर से उतारो। या मेहर देने में ही हमें सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, जबकि कहा गया वो सिर्फ देना नहीं है, नेहला है, और उसको फरीजा कहा गया। लेकिन हम हर जगह खर्च करते हैं, आप देखें बरियां कितनी महंगी और क्या क्या किस किस तरह की होती है, लेकिन जो हम मेहर देना है वहां पे मसला है। और जो लोग मेहर लिखवाते भी हैं, बड़े बड़े मेहर, उनका भी क्या होता है, ताकि अनाउंसमेंट जब हो कि इतने मेहर के इवज इसकी निकाह से किया जाता है, तो लोगों को पता लगे कि हमने इतने लाख मेहर लिखवाया। ऐसे नहीं होता, और बाद में कौन दे रहा होता है। हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि अगर एट द स्पॉट आप नहीं दे सकते, यानी वैसे तो निकाह के फौरन बाद देना चाहिए, नहीं दे सकते तो मेहरे मुअज्जल होता है, यानी उसकी भी एक अजल मुकर्र होनी चाहिए, उसका भी एक टाइम होना चाहिए कि उस वक्त उसको इस टाइम तक मैं किस्तों में करके दे दूंगा, या इस टाइम तक मैं, आज 50,000 है तो 25 आज दे दिए, 25 उस वक्त दे दूंगा। लेकिन ऐसे नहीं कि ओपन एंडेड ही है, वो देना ही नहीं है। ये तो खुल्लम खुल्ला मजाक है ना अल्लाह ताला के अहकाम का, और लड़कियों को भी नहीं पता होता क्योंकि मेहर क्या चीज है। तो ये बता दिया गया कि अगर वो औरत देती है तो फिर आप ले सकते हैं। अच्छा इससे यहाँ पे पता चला ना कि औरत की भी अपनी, औरत अपनी पोजेशन में माल रख सकती है, वो जॉब करती है या उसका मेहर है या उसके जो तोहफे तहाये दिए गए हैं वो उसकी पोजेशन होगी। आदमी को ये नहीं इजाजत है कि मेरी बीवी है ना जो मर्जी मैं करूं, नहीं, वो भी उसकी इजाजत से, जैसे हदीस में आता है किसी इंसान का माल हलाल नहीं है मगर उसके दिल की खुशी से। अगर तो पता है ना कि हाँ कोई बात नहीं है, अब आपको पता है कई चीजें हैं, आपको पता है आप अपने हस्बैंड से भी उसकी भी यूज कर लेते हैं या उसके पैसे उतने ले लेते हैं, आपको पता है वो इस पे माइंड नहीं करेगा, या आदमी है तो उसको पता है मेरी औरत इसके ऊपर, उसको कुछ नहीं है, मुझे इजाजत इसने दी भी है, वो एक अलग बात। लेकिन उसके माल से नाहक ऐसे लेते रहना जबकि पता है ये नहीं देगी खुशी के साथ इसको, हल अल इल्ला ये कि मैं मजबूर कर दूं, ये करना ये सही नहीं है। ये किसी के साथ भी सही नहीं, हदीस में तो ओपन है ना, किसी इंसान का माल भी हलाल नहीं है मगर उसकी दिल की खुशी के साथ। मसलन आप बच्चों को भी ना शुरू से ये सिखाना चाहिए, बच्चों की अक्सर क्यों लड़ाइयां होती हैं, इसने मेरी ये चीज ले ली, उसने मेरी ये चीज उठा ली, उसने मेरी ये चीज पहन ली, तो नहीं उसकी इजाजत के साथ और खुशी के साथ लो फिर ठीक है। हम कहते हैं कोई बात नहीं फिर क्या हो गया, वो ठीक है आप उसको समझाएं कि देने में अच्छी बात है, आप दिल को बड़ा करें, लेकिन दूसरे को भी ये समझाएं कि आप इजाजत के बगैर नहीं किसी की चीज लें, चीजें उसकी इजाजत से लेनी चाहिए, और जब वो अगर दे दे अपनी दिल की खुशी के साथ औरत तो फिर आप खुशी से खाओ, खुशी से ले सकते हो, फिर कोई झिझक की जरूरत नहीं। वो मोहब्बत से दे रही है तो फिर आप भी मोहब्बत से ले लें, और लेने के बाद मरिया खुशगवार ही रहे, ये ना हो कि तबीयत बोझल हो जाए लेने के बाद, औरत ने ताना मार दिया, देखा मैंने उस वक्त ये दिया था, या आदमी ने कह दिया कि अगर मैंने ले लिया तो क्या, तुमने दे दिया तो क्या बड़ा एहसान कर दिया तुमने, और मेरा तो ये हक ही है, और हाँ मुझे कोई ऐसी जरूरत तो नहीं थी लेकिन मैंने कहा चलो इसका दिल रखने के लिए ले रहा। तो बाज दफा लोग तोहफा भी कबूल ऐसे करते हैं कि इंसान का दिल खराब हो जाए। तोहफा जब कोई दे अपनी दिल की खुशी के साथ तो उसको दिल की खुशी के साथ ही ले, अब उसको मुंह पे मार मार के वैसे मुझे जरूरत तो नहीं है लेकिन चलो तुम्हारा दिल रखने के लिए ले लेती हूँ, अब तुम लाई हो तो फिर अब ले लेती हूँ, वैसे मुझे तो नहीं चाहिए था, अब इससे दूसरे का दिल कितना खराब होगा। वला तो तू सुफहा वाला को मुल्लती जाल अल्लाह लकुम कियामन, और बेवकूफों को माल ना दो जिन जिन जिस माल के ऊपर तुम्हारी जिंदगी का कयाम है, वो माल बेवकूफों के हाथ में ना दे दिया करो। अब इसके अंदर बड़ी हमें हिकमत सिखाई गई है, देखिए जो माल है ना, जो पैसा है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, اس نعمت کو یوز کرتے وقت انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو نہ دے دے کہ جو مثلا بچے ہیں. تو سفہا یہاں پہ کون ہے؟ سفہا سے مراد اصل میں وہ ہے جن کی عقل نہیں ہے, اتنی سمجھ نہیں ہے, چاہے وہ بھی بہت ینگ ہیں اس وجہ سے نہیں عقل, یا ویسے ہی بعض صفحہ کوئی لوگ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو سمجھ ہوتی ہی نہیں ہے ان کے اندر, تو ان کے ہاتھ میں نہ دے دو کہ وہ اس کو ضائع کر بیٹھے. کیونکہ اس مال کے اوپر کیا ہے, تمہاری زندگی کا قیام ہے, تمہاری ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ ہے. تو کوئی مجنون ہے یا دیوانہ ہے یا وہ مینٹلی صحیح نہیں ہے یا وہ نابالغ ہے یا وہ ویسے ہی بڑا بھی ہو گیا تو تب بھی اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے, ان کے ہاتھوں میں مال لٹانے کے لیے نہ دے دو. جیسے ایک دفعہ کسی نے بہت فخر سے کہا کہ میں نے تو اپنے بچوں کو اتنے ہزار بسنت پہ یہ پتنگیں لینے کے لیے میں نے اتنے ہزار دے دیے, ان کو اتنے ہزار میں نے ان کو یہ فائر ورکس آتش بازی کے لیے دے دیے. اب یہ کیا ہے؟ یہ مال کو لٹانا ہے, یہ مال کو ضائع کرنا. تو آدمیوں سے کہا گیا کہ تمہاری یہ زندگی کے قیام کا ذریعہ, یعنی انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس میں بہت ساری اس کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی, یہ پوری اس مال کے ذریعے ہوتی ہیں. اسی طرح نیکی کے کئی چیزیں ہیں وہ اس مال سے ہی ہوتی ہیں, نیکی کے بھی کئی کام اسی مال سے ہی کریں گے نا. تو اس سے قیام کیا ہے؟ کھڑے ہونا. ٹھیک ہے, تو زندگی اس کی بیس پہ کھڑی ہوتی ہے. تو مال اللہ کی نعمت سمجھ کے اسی قدر کرو. اس مال کو ایسے اڑایا نہیں جاتا کہ پھونک رہے ہیں کہیں فائر ورکس پہ, پھونک رہے ہیں کہیں ایسی ڈیکوریشن پہ جو چند منٹ کی ہے, پھونک رہے ہیں کہیں ایسے کپڑوں کے اوپر جو ذرا دیر کے لیے پہننے, پھونک رہے ہیں ایسے باجے گاجوں میں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یا اڑا رہے ہیں بس ایسے ہی فضول ہی اڑائے جا رہے ہیں. دیکھیے کوئی چیز ہے وہ اس کو چیز کو صرف اس لیے لیا کہ بس کوئی دیکھا ہی نہیں کہ ہاں اور بھی کوئی چیز اس کے سائڈ پہ تھی جو کہ اسی جیسی ہے اور اسی کی کوالٹی کی ہے, لیکن بس وہ پرواہ نہیں ہے نا, سو واٹ, $10-12 ہی ہیں سو واٹ, چلو $50 ہیں سو واٹ, بس اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں پیسے کو. اسی طرح جب ویسے ہی پیسے کی نہ قدری کرنا, اس کو اڑانا, اس کو ضائع کرنا, اس کی اتنی سخت ممانعت ہے. اللہ تعالی کو جو کام ناپسند ہے ان میں سے یہ, ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ مال کو ضائع کیا جائے. انسان خود بھی نہ کبھی ضائع کرے اور نہ ہی کبھی ایسے ہاتھوں میں دے جو کہ مال کو ضائع کر دے. اور ان کے اندر خاص طور پہ وہ بچے جو بالغ نہیں ہیں, اور ان میں ضروری نہیں کہ جو یتیم کی یہ بات کی جا رہی ہے, کوئی بھی جو اپنے اولاد کے لیے بھی ایسا ہے کہ انسان ان کے ہاتھوں میں, مثلا لوگ بڑی بڑی گاڑیاں بچوں کو دے دیتے ہیں, بچے نے منہ سے بات نکالی یا وہ چاہے الٹی سیدھی کوئی چیز ہے, بیکار ہی کوئی چیز ہے, اب نہیں لے کر آنی ہے اس لیے کیونکہ اس نے منہ سے جو نکال دی ہے بات, تو نہیں. ایسی چیزیں بچوں کو جو انسان کو خود تو عقل ہوتی ہے نا, تو یا ان کو ایسے بڑے بڑے پاکٹ منیز دے دینا, اب وہ اڑاتے پھر رہے ہیں, پتا ہے ان کو سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے, یہ اس کو ضائع کریں گے, لیکن بس ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں. تو دن ایک جیسے نہیں رہتے, انسان کو سوچنا چاہیے اور عقل مندی کے ساتھ اس پیسے کو استعمال کرنا چاہیے. کل کو محتاجی بھی ہو سکتی ہے, یہ نہیں کہا جا رہا کہ کنجوسی کرو. فرمایا ان کے بارے میں, ورزقوہم فیہا واکسوہم, ان کو کھلاؤ پلاؤ, ان کو پہناؤ, وہ ٹھیک ہے لیکن ضائع کرنے کے لیے نہ دے دو. ضروریات ان کی پوری کرو, مگر یہ کہ ایسے تعیشات, اچھا بعض لوگ گھروں کے اندر بجلی چل رہی ہے, پانی چل رہے ہیں, لائٹیں جلی ہوئی ہیں, پنکھے چل رہے ہیں, اے سی چل رہے ہیں, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے, وہ تو کیا فرق پڑتا ہے, بل آ بھی جائے گا تو کیا ہو گیا, اسے کیا فرق پڑے گا. تو اتنی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, یہ کنجوسی نہیں ہے. مال کو یعنی انٹیلیجنٹلی خرچ کرنا, وائزلی خرچ کرنا, یہ کنجوسی نہیں ہے. کنجوسی ہوتی ہے جب انسان اس کے اندر بخل کرتا ہے, جہاں پہ جائز ہے وہاں پہ بھی نہیں خرچ کرتا, مگر انٹیلیجنٹلی ایک بجٹنگ کرنا یا مال کو صحیح سے استعمال کرنا, یہ مال کی قدردانی ہے. تو ان کے ہاتھوں میں نہ دو. اس کے بعد سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, तो हम ऐसे ही माल को फेंकते ना फिरे ना खुद और ना ही ऐसे बेअकलों को दे दें, उनको बेचारों को तो कोई समझ नहीं, असल कसूर तो देने वाले का है ना। वकूलू लहुम कौल मारूफा, और फिर अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं, आप बस मिसाल के तौर पे, अब उनको वो तो बेसमझ है, ना समझ है, आप हमसे प्यार नहीं करते, आप हमसे ऐसे नहीं है, हमें इतने पैसे नहीं देते, फलां के माँ बाप ने तो इतने दिए, तो कोई बात नहीं, उनके साथ आपने अच्छी भली बात करनी, अपने अखलाक से नहीं गिरना, ठीक है, समझदारी से बात करनी है, उनकी बात को माइंड करके नहीं बैठ जाना, क्योंकि वो तो कम अकल है, और उनको मजाक नहीं उड़ाने शुरू कर देना, तुम तो हो ही पागल, तुम तो हो ही कम अकल, तुम्हारे बारे में ही तो कुरान में ये कहा है कि जो बेअकल है, तो इसलिए तुम बेअकल हो, मैंने नहीं तुम्हें देना, ऐसे नहीं, कौले मारूफ रखना है आपने हमेशा। तो अब यहाँ पे यतीम बच्चे भी हो सकते हैं, अब यतीम बच्चों को भी अगर वो अभी बच्चे हैं, ये लो पकड़ो अपने पैसे, हमसे नहीं तुम्हारी जिम्मेदारियां ली जाती, जाओ जाके जहां मर्जी खर्च करने करो, अब वो जाया कर देगा, उड़ा देगा, कल को बड़ा होगा, अभी तो उसको समझ नहीं है, अकल नहीं है, वो कहीं फेंक आएगा पैसों को, तो कल क्या उसके लिए होगा, तो उसको भी ऐसे ना दे दो, ठीक है, कि हमसे नहीं आप संभाले जाते, हमसे नहीं ये किसी की बातें सुनी जाती, चलो पकड़ो अपने पैसे, नहीं ये नहीं करना। इसी तरह अपने बच्चों के साथ भी नहीं करना, इसी तरह बाज औरतें होती हैं वो इतनी नादान ना समझ होती हैं कि वो पैसों को उड़ाती फिरती है, तो फिर आदमी को देखना चाहिए कि इस औरत के हाथ में भी पैसे देने हैं कि नहीं, क्योंकि वो ऐसा पैसा उड़ाती है कि जो पूरे महीने की तनख्वाह थी वो पहले ही खत्म करके बैठ जाती है। तो सफाहत किसी तरह की भी हो सकती है। अब यहाँ पे ना तो बाज तो खैर अच्छे भले बड़े लोग भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर ये बेवकूफी होती है कि उनको ये नहीं समझ होती कि हमने किस तरह से पैसे को संभाल के चलना है और एतदाल का रास्ता कौन सा होता है, कि ना तो इंसान ऐसा करे बुखल के अपने ऊपर भी खर्च करने से जाए और अल्लाह के रास्ते में भी, ना ऐसा खर्च करे कि फकीर ही होके बैठ जाए। कितनी बड़ी तालीम अल्लाह तआला ने दी है ना, ना कि इसने भी हमें समझाया है। अल्लाह अकबर, इस तरह तो माएं भी नहीं बच्चों को समझाती, माएं भी बेटियों को ऐसा समझा के नहीं ससुराल भेजती कि बेटी वहां पे जाके इस तरह से करना, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में समझा दिया, यानी इंसान के माल की भी हिफाजत का अल्लाह ताला ने इत्तमाम फरमाया। वबतलुल यतामा हत्ता, और आजमाइश करते रहो, आजमाते रहो यतीमों को, हत्ता इदा बलगुन निकाह, यहाँ तक वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, यानी बालिग हो जाए, जब वो बालिग हो जाएं तो उस वक्त तक उनको, जब उस वक्त उनको आजमाओ। आजमाइश कैसी, मतलब उनको जरा देखते रहो, कोई जिम्मेदारी दे के, कोई छोटे से पैसे दे के, कोई इस तरह से करके कि अब ये कैसे इसको खर्च करते हैं, इनके अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, अब ये बालिग हो गए हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि कल को ये अपना माल संभाल सके अगर इनको हम अभी दे दें। फिर अगर आनस तुम मिनहुम रुश्दन, अगर तुम उनमें समझदारी पाते हो, बाज लोग बच्चे बालिग होते हैं तो समझदार होते हैं, बाज बालिग होते हैं, मसलन 12-13 साल की उम्र में बालिग भी हो गए लेकिन उनके अंदर समझ नहीं है, तो अगर तुम बलूगत शर्त नहीं है बल्कि बालिग होने के बाद ये शर्त है कि वो समझ बूझ भी रखते हो, फदफाउ इलैहिम अमवालहुम, तो अब उनको उनके माल दे दो, अब उनके हवाले कर दो, क्योंकि अब वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ये दोनों शर्तों को आपको नोट करना, और फदफाऊ का मतलब क्या, पूरे पूरे दे दो, ठीक है। वला तकुलुहा इसराफ व बिदारन अन यकबर, तुम उनको खाओ ना इसराफ के साथ, ये ना हो कि उसका यतीम का माल था तो जल्दी जल्दी ओवर स्पेंडिंग ही कर दी, ब्रांड नेम खरीदते रहे उनसे, चाहे वो बच्चे के लिए खरीद रहे हैं, देखो मैंने तो इसको इतना अच्छा पहना है, आपको पता है कि नहीं इतनी इसकी जरूरत है, लेकिन इसराफ करते रहे, खुद भी निकाल निकाल के उसमें से इतना स्पेंड कर रहे हैं, इसराफ मत करो, ऐसे अपने माल को संभाल संभाल के रखते हो और खर्च करते वक्त सोच के खर्च करते हो, इसी तरह होना चाहिए। वह बिदारन अही अकबरू, और जल्दी ना करो कि ये तो बड़े हो जाएंगे, कल को ये बालिग हो जाएगा, हमसे तो सारा चला जाएगा, तो आज ही खा लो जो है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट सिखाइए कि जो इसका यतीम का वली है वो कैसा, उसको उसके मनी को कैसे मैनेज करना है उसको, अब ये भी कौन करेगा बताएं, कोई आके गिनेगा किसी के, किसी ने यतीम के इतने खाए, इसने इतने खाए, 100 रुपया खा लिया कि 20 रुपए खा लिए, कि क्या किया, कोई देखेगा, कौन सी पुलिस देखी, उस बेचारे को तो खुद नहीं पता, वो तो खुद छोटा यतीम वो होता है जो अभी बालिग ना हुआ, बलूगत के बाद कोई यतीम ही नहीं, तो वो बेचारे को क्या पता, अब ये वो कर सकता है जिसमें क्या हो, तकवा, इसीलिए सूरा स्टार्ट ही हुई है तो तकवा के साथ स्टार्ट, तकवा वाले हैं, तब तो ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ भी आएंगी और आप करेंगे भी। अगर तकवा नहीं तो फिर सारे ये अहकाम तो ऐसे ही हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर और उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी, फरमाया वमन कैना गनियन फलयस्ताफिफ, जो गनी है, जो जो खुद मालदार है ना, उसको चाहिए कि वो परहेजगारी से काम ले। यानी क्या मतलब है, यानी वो बंदा इससे मुआवजा ना ले। यानी अब वो इस बच्चे की, यतीम बच्चे की, जाहिर है मनी मैनेजमेंट कर रहा है वो, कोई उसके माँ बाप घर छोड़ के गए हैं, कोई फैक्ट्री छोड़ के गए हैं, कोई दुकान छोड़ के गए हैं, वो उसको मैनेज भी कर रहा है। तो अब इसकी वो उसका टाइम तो लग रहा है ना, वो उसको एफर्ट तो करनी पड़ रही है, तो वो इसकी उजरत ले सकता है या नहीं ले सकता? उसका ये जवाब है, अगर वो मालदार है ना तो वो इससे बचे। वह मन कहना फकीरन फलियाकुल बिलमारूफ, अगर वो फकीर है और खुद मोहताज है, अब वो कहता है अगर मैं इस बच्चे के लिए देखूंगा तो मैं अपना काम किस वक्त किया करूंगा, तो वो उसमें से मारूफ तरीके से, जो भले तरीके से, जो सबके नजदीक है कि हाँ दिस इज फेयर, इतना तो इसका होना ही चाहिए हक, उतना। अल्लाह ताला ने यहाँ पे परसेंटेज फिक्स नहीं की, ये नहीं बताया इतने परसेंट इतना, सिर्फ ये उसके ऊपर छोड़ दिया जो उस जमाने में जो मारूफ है, जिसको जो भी देखे जो कहे कि ये फेयर है, उतना फिर वो उससे ले ले। मगर वो कौन ले? फकीर। यहां से ये भी पता चलता है एक बात कि जब भी कोई दीन के भी काम हो ना, तो जो गनी है फलियस्ताफिफ, मसलन मस्जिद के आप कोई काम करते हैं, मसलन है पढ़ाने के, कोई इदारा मैनेज करने के, कोई और चीजों के, अगर आप खुद गनी है ना, तो इससे बेहतर है कि आप उसकी फीस ना लें या आप उसकी तनख्वाह ना लें। हाँ, अगर आप खुद मोहताज हैं, इसीलिए जो कुरान पढ़ाते भी हैं, अगर वो उसके फीस ले भी लेते हैं तो कोई हराम नहीं है ये, मगर ये है कि इससे अगर वो अच्छे भले हैं और नहीं उनको जरूरत है तो नहीं लेनी चाहिए। एक और बात मेरे से रह गई यहाँ पे कि पिछली आयत के हवाले से वाला तो सफा वाला को, इससे उलमा ने एक और एक्सट्रैक्ट किया मसला, और उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे कहा गया ना बेवकूफों को ना दो तुम अपने माल, इसी तरह बेवकूफों को ऐसी कोई पोजीशन भी ना दो जिसके वो अहल नहीं है। मसलन आज क्या है, सिफारिश अगर है तो फिर आप चाहे कुछ भी नहीं पढ़े हुए और कोई बिल्कुल ही ना अहल भी हो तो वहां पे रख लेंगे। रिश्वत अगर देते हैं तो वो पोजीशन किसी को मिल जाती है। कोई स्कूल तक नहीं गया हुआ, उसको कोई समझ नहीं है, वो पार्लियामेंट का मेंबर बन के बैठ जाता है, लोग उसको वोट दे देते हैं। जब तुम्हें पता है कि ये सुफहा हैं तो क्यों उनको वो पोजीशंस देते हो? उनको नहीं दो वो पोजीशन, यानी जो उसके लायक नहीं है कि उस जिम्मेदारी को निभा सके। जैसे यहाँ पे वो हैं जो लोग इस माल को नहीं संभाल सकते, तो कहा गया नहीं उनको दो। इसी तरह जितने भी महकमे हैं, जितनी भी जॉब्स हैं, जितनी भी पॉलिटिकल की पोजीशंस हैं, कोई वजारतें हैं, कोई कुछ हैं, जो उसका अहल है उसको ही दो। जो उसको जाया कर देगा, उसके ऊपर तुम्हारा कयाम है, जो भी इदारा है, जो भी पोजीशन है वहां पे, देखें जो भी चला रहे होते हैं उसके ऊपर पूरी उस इदारे की वेलबींग का डिपेंडेंट होती है। अगर वो ऐसे लोगों को दे दी जाए तो फिर वो उसको जाया कर देंगे, इसलिए उनको नहीं देनी चाहिए। और दूसरा असूल यहां से भी आपको पता चल गया कि हर एक जगह पे जहां पे भी आप कोई फलाह का काम करें, ये भी एक नेकी का काम ही है ना, वो यतीम के लिए भाग दौड़ कर रहा है, उसकी चीजें देख रहा है, उसके मनी मैनेज कर रहा है, कभी अकाउंट से निकालने हैं, कभी रखने हैं, कभी कुछ करना है, तो एक टाइम तो उसका लगेगा। तो फिर क्या करे, वो पैसे ले इसके कि नहीं ले? अगर अमीर है तो फिर ना ले। फाइदा दफा तुम ही वालम फाशीद वाले, जब तुम देने लगो, जब वो बाले हो जाए, तुमने देख भी लिया कि ये अपने पैसे अब खुद संभाल लेंगे, तो अब आप उसको देने लगे हो, तो उस वक्त भी गवाह खड़े कर लिया करो कि गवाह हो कि हाँ मैंने इसको देखो इतने थे इसके, इतने इसको मैं दे रहा हूं आप लोगों की मौजूदगी में, ठीक है? ताकि कल को ये ना हो कि वो जाया कर दे इधर उधर पैसे, फिर आगे कहे इसने तो मुझे दिया ही नहीं थे, या कल को इस पे इल्जाम लगा दे मेरे माँ बाप तो इतना छोड़ के गए थे, इन्होंने तो बीच में से खा लिए। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना इसमें, फिर ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं। इसी वजह से देखें, याद रखें कि ऐसा इंसान को ऐसी पोजिशन नहीं लेनी चाहिए जो कि उनको पूरा ना कर सके, जो इस चीज में अकाउंटिंग में, हिसाब किताब में, या ऐसी चीजों को नहीं चला सकते, वो लोग फिर ऐसी जिम्मेदारियां भी ना ले, क्योंकि अगर ले लेंगे तो उसके अंदर कोई मसले हो जाएंगे। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है, ये वो ही ले जो उसको निभा सकता है। वकफा बिल्लाही हसीबा, ये याद रखना, तुम जितने मर्जी गवाह भी खड़े कर दो, खुद को सच्चा कर लो कि हम देखो पूरा पूरा दे रहे हैं और हमने कोई हेरा फेरी नहीं की और हमने देखो तुम्हारे सामने इसके हवाले कर दिया, तो उस काफी है अल्लाह हिसाब लेने वाला, ऊपर अल्लाह तो है ना, अल्लाह देख रहा है, तुम गवाह भी बना लो लेकिन ये याद रखना कहीं भी हेरा फेरी करोगे अल्लाह है हिसाब लेने वाला। फिर फरमाया लिरिजाली नसीब मिम्मा तरकल वालिदानी वल अकरबून, मर्दों के लिए उनका हिस्सा है, एक फिक्स अल्लाह ने हिस्सा कर दिया जो छोड़ जाए उनके वालदेन और रिश्तेदार। अब ये भी आयत हमें ये बताती है असल में क्या होता था पहले जाहिलियत के जमाने में और आज के जमाने में, आज जाहिलियत के आज वाले जमाने में और पहले जमाने में ये होता था कि जब कोई मर जाता था ना तो उसकी जो बड़ी औलाद होती थी वो तो माल ले जाती थी, छोटे बच्चे महरूम रह जाते थे, औरतों को भी कोई कुछ नहीं देता था, या फिर जो चचा वगैरह ये वगैरह ले गए सारा कुछ और उसके बाद वो यतीम बच्चे देखते रह गए और फिर उनके लिए तो कुछ भी नहीं रहा, तो ये बहुत कॉमन था। अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि इसके बाद आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी के हिस्से करें कि इसको कितना हिस्सा मिलना है, अल्लाह ने खुद ही हिस्से कर दिए हैं, बस अल्लाह ने बता दिया कि किसका कितना हिस्सा है, अब वो मर्द है औरत है, करीब का रिश्तेदार है दूर का रिश्तेदार है, छोटा बच्चा है बड़ा बच्चा है, किसका कितना हिस्सा है अल्लाह ने फिक्स कर दिया है। अब एक औरत थी उम्मे कुज्जा उनका नाम था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी या रसूलल्लाह मेरे दो लड़के हैं, इनके वालिद फौत हो गए और इनके पास कुछ भी नहीं है, तो अब क्या मतलब किया जाए, तो ये आयत नाजिल हुई थी। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हिस्से फिक्स हो गए और कौन छोड़ जाए, वालदेन और अकरबू, सारे रिश्तेदार नहीं, सारे रिश्तेदारों के हिस्सों में से किसी का हिस्सा जरूरी नहीं निकलता हो, बल्कि अकरब में यहाँ पे मुराद ये है कि यानी जैसे बेटा बेटी हैं या मियाँ बीवी हैं, ये बिल्कुल करीब के रिश्ते हैं, इनके हिस्सों में से हिस्सा बनता है, अगर बेटा बेटी में से कोई फौत हो जाए तो वालदेन का हिस्सा बनेगा, मियाँ बीवी में से तो कोई फौत हो जाए तो दूसरे फरीक का हिस्सा बनेगा, वालदेन में से फौत हो जाए तो बच्चों का हिस्सा बनेगा, तो वालदेन भी आ गया और अकराबून भी आ गया, इनसे तुम हिस्सा मिलना ही मिलना है और फिक्स है। वलिन निसाई नसीबो मिम्मा तरकल वालिदानी वल अकरबून, हालांकि अब अगर सिर्फ कह दिया जाता कि लोगों के लिए हिस्सा है तो वो काफी था, लेकिन अलग से निसा का बताया गया कि औरतों का भी हिस्सा है, लोगों सुन लो, ये नहीं कि औरत का कोई हिस्सा ही नहीं है, ये नहीं है कि औरत को पहले जमाने में भी नहीं देते थे आज भी नहीं देते हैं, कहते हैं इसकी जरूरत क्या है, इसने क्या करना है, इसको तो जहेज में हमने दे दिया था, इसको अब विरासत में क्यों दें, इनको तो हमने इतना पढ़ा दिया था, इनकी तो शादियों पे इतना खर्च कर दिया था। तो इस्लाम ने ये सारे जो जुल्म पे मबनी रस्म और रिवाज और तरीके और ये सब खत्म करके खुद ही हिस्से फिक्स कर दिए और बता दिया औरतों का भी हिस्सा है, जैसे मर्दों का हिस्सा है औरतों का भी हिस्सा है, और किसमें से मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा मतलब क्या, जो मरने वाला जो छोड़ के गया है ना चाहे वो कलील है या कसीर है मगर उसमें हिस्से हैं, मर्दों के भी हैं औरतों के भी, इसलिए ये बात बताई जा रही है कि कसीर में तो समझ आती है, जैसे मैंने आपको भी बताया बड़ी जायदादें हैं घर हैं जमीनें, तो इनमें से तो कोई समझ सकता है, लेकिन कलील में से किसी को कुछ नहीं समझ आती, कोई पंखा है कोई बर्तन है कोई औरत फौत हुई है उसके कपड़े हैं, इसको कौन समझता है कोई कि ये भी कोई विरासत में तकसीम होने की चीज है, और हर के पास तो बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती लेकिन सबके पास कोई थोड़ा बहुत तो होता है, अब जिसके पास जमीनें जायदाद नहीं क्या उसका कोई भी नहीं विरासत होगी, उसकी भी होगी जो उसका था वो, आप सोचे ना एक इंसान जब मर जाता है ना तो ऑटोमेटिकली चाहे कोई डिक्लेयर करे या ना करे ऑटोमेटिकली उसके वारिस उसके माल के हकदार बन जाते हैं, वो माल उनका हो, हकदार क्या बन जाते हैं इसको छोड़े, वो माल उन वारिसों का हो गया, जो ही ये मर गया तो माल वारिसों का हो गया, चाहे कोई माने या ना माने, चाहे उनको ओनरशिप दें या ना दें, उनकी मिल्कियत है ये माल, समझने, अब जो मर गया ना उसकी आप चीज नहीं यूज कर रहे, अब किसकी चीज है ये, अब इन ओनर्स की, अब ये आपने तकसीम नहीं किया लेकिन उनकी ओनरशिप है, ये उनकी चीज है, इसमें से जो भी खर्च करेंगे आप, मसलन एक बंदा छोड़ के गया 1 लाख, अब वो मर गया ना, अब इस 1 लाख में से अगर आप कुछ लेंगे तो ये आप उसके पैसों में से नहीं ले रहे, वो तो बहुत हो गया, उसकी तो जूं ही आंखें बंद हुई उसकी मिल्कियत खत्म हो गई। अब इसके मालिक इस 1 लाख के सारे वारिस हैं, जितने भी अल्लाह ने इसके वारिस बनाए हैं, इस आदमी के जाने वाले के जितने वारिस हैं वो इसके मालिक हैं। अब आप इसमें 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो आप उनके पैसों में से खर्च कर रहे हैं, और ये खयानत हो जाएगी अगर उनके पूछे बगैर आप खर्च करते हैं। समझ आई बात? नसीबम मफरूदा, ये हिस्से हैं मुकर्रर किए गए, मुकर्रर किए हुए, अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं, किसी इंसान ने नहीं। इसी वजह से अगर कोई इनमें से अपना हिस्से का मुतालबा करता है तो वो कोई गलत नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि ये उसकी चीज है। अब वो कहते हैं ये तो कितना लालची है ना, देखो यार इसको शर्म नहीं आती कहते हुए कि भाई मुझे विरासत में से हिस्सा दो। अब कोई मर गया है तो पीछे जो उसकी तो हो गई वो चीज, वो अपनी चीज के लिए कह रहा है मुझे दे दो, तो कह रहे हैं कि नहीं देखो कितना लालची है, हालांकि अल्लाह ने उसको ये हिस्सा दिया है और इसको लेने में भी कोई शर्म नहीं करनी कि आए अगर हम ले लिया तो क्या कहेंगे लोग, या क्या इसने ले लिया हिस्सा, नहीं, वो उसको हक अल्लाह ने दिया। और इसमें वारिस की अपनी मर्जी नहीं है, मुझे कम क्यों मिला, उसको क्यों मिला, ज्यादा क्यों उसको दे दिया गया, नहीं, जो अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर कर दिया वो कानून है, वो अल्लाह ताला ने बता दिया, तो उसके मुताबिक ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अमूमन इस मामले में क्या होता है, बेटियों को कहा जाता है आप माफ कर दो, या कोई झिझकता है या डरता है या दबता है, या बाज दफा ऐसे होता है कि अरसा ही गुजर जाता है उसको तकसीम ही नहीं किया जाता, या वो लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनको कहते हैं वो तो पहले ही मालदार हैं इसलिए उनको क्या जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है हमें जरूरत है, हमें बस दे दो। या क्या करा जाता है, इतनी तरह की इसके अंदर ज्यादतियां होती है ना, या क्या किया जाता है कि उनकी मर्जी के बगैर ही उसमें से थोड़ा थोड़ा खर्च करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा खर्च करते रहे करते रहे करते रहे, और जब 10-12 साल के बाद उसको तकसीम करने का वक्त आया और सोच ही लिया कि चलो अब तकसीम कर देते हैं, अब हम चलो अब इस पोजीशन में आ गए कि हम तकसीम करें, तो वो अब चीजें ही आधी खत्म हो चुकी होती, कल्ला में से तो कुछ भी नहीं रह गया होता, कसुर में से हाँ थोड़ा बहुत जो होता है वो कर दिया जाता, कल्ला में कुछ नहीं कर किया जाता, उसको तो कुछ समझा ही नहीं जाता ना। और इसमें खयानतें कितनी होती हैं, बाज दफा जो बेटे होते हैं वो सारे पे कब्जा करके बैठ जाते हैं कि अब ये तो हमारा ही है, अब हम क्यों बहनों को दें, क्योंकि अगर बहनों को दिया तो इनकी खानदानों में चली जाएगी ये जायदाद या ये पैसा, तो हम तो नहीं देते, जो देना था हमने दे दिया, वह हमारे माँ बाप ने दे दिया अब हमने नहीं, अब वो कब्जा कर लिया। इस तरह बेटियां कब्जे कर लेती हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी माँ की निशानी है, आए ये तो मेरा हो गया वो तो मेरा हो गया, बस करके सारा खुद रुसमालिया भाभियों को ना मिले, ये कड़े मेरी माँ को बड़े पसंद है ये तो मैं ही लूंगी, ये खयानत है, कयामत के दिन लानी पड़ेंगी ये चीजें। तो ये भी एक बहुत बड़ी खयानत की बात है। और इसमें देखें जो जो ही मरने वाले की आंखें बंद हुई हैं उसके बाद कल्ला और कसुर जो भी उसकी मिल्कियत था वो सब एक जगह पे होना चाहिए और उसकी तकसीम होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि वो अगर वो एसी छोड़ के गया है तो वो एसी उसका था, अब आप एसी खूब इस्तेमाल किया आपने, आपने उसके बर्तन खूब इस्तेमाल किए, आधे तोड़ दिए आधे वो उनके रंग ही उड़ गए, एसी खराब हो गया, बाकी चीजें टूट फूट गई, फर्नीचर खत्म हो गया, जब सारी चीजें खराब हो गई तो फिर आपने कहा कि अच्छा अब हम बांटते हैं। और बाज दफा बेवा औरत को ताकीद की जाती है, लोग कहते हैं ना तू ना अभी बांटी, अगर तूने विरासत बांटी तो तेरे बच्चों ने तो तुझे पूछना नहीं फिर क्या होगा, तो वो बांटते ही नहीं, फिर उसके बाद वो उसी तरह रहता है। तो ये सारी ना इंसाफियां हैं,
जो कि विरासत में होती हैं। तो ये हुक्म जब आ गया कि अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिए और अल्लाह और कसुर में भी है हिस्सा सबका, तो फिर आप बताएं, यानी कल्ला और कसूर का मतलब क्या है? कलील, थोड़ी चीज भी है। मसलन उसके कपड़े हैं, उसकी कोई जो उसके पैसों का था, उसने कोई फर्नीचर लिया हुआ था, उसने उसकी गाड़ी थी, उसकी कोई उसने अपने जिसको जेवर बना के रखा हुआ था, वो उसकी चीजें। और कसूर यानी ज्यादा, मतलब कोई बैंक बैलेंस है, कोई बंगले हैं, कोई जायदादें हैं, कोई बड़ी बड़ी चीजें हैं, प्लॉट हैं, कोई मतलब ज्यादा बड़ी चीज है ना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, वो कलील है ना, कम थोड़ी या कम वैल्यू की, तो उसको क्या समझा जाता है बताएं? इवन जो कपड़े वो उतारती है ना मुर्दे के ऊपर से उतारे गए, वो भी किसी का हक नहीं है कि उठा के खुद ही मैं सदका कर देती हूँ। अब बेटी है वो बड़ी हमदर्द है, नहीं मेरी माँ के कपड़े हैं, मैं तो इनको सदका करूंगी, गरीबों को दूंगी इनको। आप हाँ सारों से पूछे पहले, उनसे वो रसा से, फिर आप उसके अंदर तसर्रुफ कर सकते हैं, फिर आप उसमें से चाहे वो सारे कहते हैं अगर के नहीं जी आप सदका ही कर दें, चलो हमारी माँ को सवाब मिलेगा, तो फिर ठीक है आप कर दें। लेकिन आप खुद से उठ के, एक बहू या एक बेटी खुद से उठ के कहे नहीं जी मैं ये करने लगी हूँ, मैं वो करने लगी हूँ, नहीं कर सकते। वो सबका हक है, वो समझ लें सबकी मिल्कियत है। अब ये उसकी थोड़ी है चीज जो कि आप सदका कर रहे हैं, आपको क्या राइट है? अब तो सारे वारसों की है ये। अब वो सारे वारिस जब उस चीज को मानेंगे कि आप इसको सदका करें, तब कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? इतनी मुश्किल बात नहीं है ये। वह इदा हदर अल किस्मत उलुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और जब हाजिर हूं तकसीम के वक्त। अब ऐसी कहां हमारी तकसीमें होती हैं कि भाई सारी चीजें जमा कर ली जाएं और फिर उसके बाद तकसीम किया जाए एक एक, यानी इतना तक है कि सुई भी जो है ना, सुई उसको भी तकसीम किया जाना है, सुई। और यहाँ पे तो बड़े बड़ी चीजें खा लेते हैं, वो घर चल रहे हैं उसके ही बैंक बैलेंस से, और सारा कुछ हो गया खत्म खुतम करके, कहीं कारोबारों में लगा लिए, किसी ने कुछ यूज कर लिया, बस कौन जाने भाई, साल 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 बाद कौन गिनती करता फिरता। लेकिन कहा गया सुई तक भी, वो भी विरासत है और वो वारिसों में बटेगी, बेवा में, उन यतीमों में, या अगर बड़े भी हो गए हैं तो उन उस औलाद में बटेगी, और वो अल्लाह ने आगे हिस्से बता दिए हमें। लेकिन हम खैर, हमें बहुत शौक है खुद हिस्से करने का ना, तो हम खुद ही हिस्से करके जाते हैं, मेरे पीछे से लड़ाइयां ना, तो फलाने को इतना दे देना, फलाने को इतना दे देना। वो आपको किसने कहा कि आपने हिस्से करने? आपको तो कुरान कहता है कि अल्लाह ने हिस्से कर दिए। आगे हम आयत 11 पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह ताला ने बता भी दिया किसने किसको कितना देना है। यहाँ पे क्या होता है, किसी का अगर एक बेटा और एक बेटी है ना, कहते हैं हाय बेटी है ना मेरी, इकलौती बेटी मुझे बड़ी प्यारी है, आधा बेटे को आधा बेटी को मैं इंसाफ करूंगी। अल्लाह ने कहा नहीं, बेटे को इतना मिलना है, बेटी को आगे आप आज पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने बराबरी करनी है बस, मैं तो बस मैं बेटी को कम नहीं दे सकती, ये नाजायज है। अल्लाह ने मुकर्रर हिस्से जो कर दिए हैं, आप उससे बढ़ के आगे जाना चाहते हैं? अल्लाह का कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं? हदूद तोड़ना चाहते हैं? अब यहां पर इस वाली आयत में क्या है, वो वाला टाइम आ गया कि भाई सारे फैमिली बैठी है और इस वक्त ना सारी चीजों का एक बंटवारा हो रहा है, एक इस्लामी फैमिली, हम सारे अपने आप को इस्लामिक तो कहते हैं लेकिन कहीं पे भी ये नहीं होता, लेकिन अब ये यहाँ पे इस्लामी फैमिली की मिसाल दी जा रही है। इस्लामी फैमिली बैठी है, उसने कहा है कि फिर फौत हो गया, उसकी सारी चीजें, सारी लिस्ट बनी हुई है, चलो इसको ये फलां को ये जितना अल्लाह ने हिस्से मुकर्र किए उसके मुताबिक उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, मिसाल के तौर पे घर का सारा उनका जो सामान था, फर्नीचर था, उनके बहुत और एसेट्स थे, अब वो कैसे तकसीम करें, क्या करें, चादर इसको दें, एक सूट इसको दें, एक इस बेटी को दें, इसको करें, ऐसे करें, या तो वो कहते हैं नहीं हम सारे कहते हैं इन चीजों को सदका कर दो, ठीक है फिर सबकी मर्जी है सदका कर दो, या वो सब कहते हैं कि देखो इसकी मालियत निकाल लेते हैं, ये फर्नीचर कितने का, ये फर्नीचर मसलन है कि 50,000 का, तो 50,000 चाहे एक बच्चा कह के दे ले, अच्छा मुझे, या ये मेरी माँ का जो जेवर है ये इतने पैसों का, अब एक बेटी कहती है अच्छा मैं इतने पैसे दे देती हूँ बाकी वारसों को, और बजाय बाहर क्या बेचना, मुझे बेच दो इसको, फिर ठीक है, अदरवाइज उसकी कीमत लगाई जाए, जितनी भी कीमत बाहर लगनी है, मसलन मैंने आपको कहा 50,000 है, 50,000 कीमत लगा के और उसके बाद उन में से जितने शेयर जिसका निकलता है, जिस तरह अल्लाह ताला ने उसके शेयर्स बताए हैं, उस मुताबिक उस 50,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, या कीमत ही वैल्यू, मसलन है सोफा 10,000 का,
डाइनिंग टेबल भी 10,000 की है, तो एक 10,000 की चीज इसको दे दी, अगर दूसरे भाई को दूसरी 10,000 की चीज दे दी, इस तरह से करके, मतलब जिस तरह अल्लाह ने हिस्से बताए हैं उस तरह से उसको तकसीम किया जाए। अब इसमें कंफ्यूज होने की नहीं जरूरत कि घर का सामान कैसे होगा या बड़ी चीजें उसकी तो होती हैं वो कैसे होंगी, ये भी पूरे बैठ के करने का काम है, जो कि हमें इसलिए नहीं आता कि आज तक ना हमने होता देखा तो ना हमने कभी इस चीज को अपने खानदानों में, अपने माशरे के अंदर किसी को इस पे बात करते हुए भी सुना। तो जब इस तरह से सारे बैठे हों, तो उस वक्त आप देखें एक मैयत वाला घर है, उसके अंदर रिश्तेदार भी आएंगे, और आपको पता है कि ये काम जल्दी ही होना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं है कि अभी तो हम सोचेंगे देखेंगे, अभी तो कितने साल गुजर जाए पहले उसका गम हल्का होगा, इनको पहले विरासतों की पड़ गई हैं, देखो ये कितने लालची हैं और ये आ गए हैं लेने के लिए और विरासत का कह रहे हैं बांटो। नहीं, जब कोई फौत हो तो क्या किस तरह से चीज होगी वो आगे अभी बात आएगी, लेकिन अब जब वो बैठे हुए हैं तो उस वक्त रिश्तेदार भी आ गए हैं, अब कमरे लॉक करके तो नहीं बीच में बैठ के ये कर सकते, ये भी लंबा भी काम है, तो अब क्या होगा, यतीम है कहीं, मिस्कीन है कहीं, आपके हमसाए में कोई मिस्कीन रहता है, कोई के लिए के हालात अच्छे नहीं है, हैंड टू माउथ है, वो भी अब हमसाए भी आके बैठे हुए हैं, कहीं और यतीम भी आके बैठे हैं, तो अब इस वक्त क्या करें, तो वो भी देख रहे हैं सारों को मिल रहा है, तो अब क्या है, सबकी रजामंदी से उनको भी उसमें से कुछ दे दो, फर्ज हुकूम में मकूलू लहुम कौलम मारूफ। अब कोई उनके अंदर से कुछ ऐसी बात कह देता है, नहीं जी हमें तो ज्यादा मिलना चाहिए, हमने तो इनकी बड़ी खिदमत की है, ये तो नहीं, वो कोई भी बात करते रहेंगे भले तरीके से उनको जवाब, उनको भी ऐसे नहीं बस बस ये समझ लो कि हमने तुम्हें इतना भी दे दिया ना बड़ा, इतना भी तुम्हारा हक नहीं बनता था, ये वो बातें सुना दी उसको और ये नहीं, क्योंकि कितनी कौले मारूफ की बात कितनी आ रही है ना, कि आप जब उनसे भी बात करो जो बेवकूफ है तो कौले मारूफ करो, यानी बेवकूफों के साथ भी ऐसे नहीं कि बदतमीजी पे उतर आए, इसलिए कि उनको समझ नहीं है तो आप उनके लेवल पे चले जाए, इसी तरह कोई नाजायज बात भी कर रहा है तो उस वक्त भी आप कौले मारूफ नहीं छोड़ना आपने। अच्छा एक और ज्यादती की बात रह गई यहाँ पे मेंशन करना, बाज दफा लोग कहते हैं हमारे इस बेटे ने हमारी बड़ी खिदमत की है लिहाजा हमें इसको बस देना है, बाकी को तो हमें पूछते ही नहीं थे, ये आपने नहीं फिक्स करना, ये अल्लाह ने आपको नहीं दिया कि किसने आपकी खिदमत ज्यादा की है तो आपने उसको दे दिया और दूसरों को आपने नहीं देना, या किसी को आपने आग कर देना है क्योंकि उसने हमसे बड़ी बदतमीजी की थी, नहीं ये अल्लाह ने कानून फिक्स कर दिया, नसीब है ये, नसीब नसीब मफूदा, नसीब समझते हैं ना फिक्स हिस्सा, वैसे भी हम कहते हैं ना ये इसका नसीब था, तो वो उसका नसीब है समझ लें।